अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धे आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 68 पर। 68 ये हमने 92 गाथा तक पढ़ा था, श्लोक तक। यहाँ पढ़ेंगे दो चौथी लाइन, वहां से पढ़ेंगे आगे। व्यवहार रत्नत्रय को कहते हैं। कल कुछ शब्द आए थे उद्योग उद्योग निर्वाह वगैरह, उसकी बात वो बताएंगे क्रम से। तो यहाँ व्यवहार रत्नत्रय को बता रहे। व्यवहार रत्नत्रय ने व्यवहार समय दर्शन, व्यवहार समय ज्ञान, व्यवहार समय चारित्र। ये निश्चय और व्यवहार वस्तु में नहीं होता, कथन में होता है। जो जैसी है वस्तु उसको वैसी कहना यह निश्चय, वैसा नहीं कहना अन्यथा कहना ये क्या हुआ व्यवहार। लौकिक में तो हम बहुत सियाने हैं। आपके घर में वो चाय की बोतल है क्या? तो कहते चाय की बरनी है। आपके घर में भी है? तो चाय की है कि कांच की है कि स्टील की है कि सोने की है? हाँ कांच की है। तो बरनी को कांच की, बरनी को कांच की कहना ये हुआ निश्चय। और उस कांच की बरनी को उसमें हम चाय रखते हैं, इसलिए उसी बरनी को चाय की बरनी कहना ये हुआ व्यवहार। ये कोई निश्चय बरनी और ये व्यवहार बरनी, ऐसे दो बरनी नहीं है, बरनी एक ही है। तो उसको उसमें संयोग की अपेक्षा या अन्य किसी अपेक्षा से हम उसको कहते हैं तो वो हो गया व्यवहार कथा। यहाँ पर भी ऐसी ही बात है।
वस्तु में नहीं होता है, कथन में होता है और
ज्ञान में लगता है। कथन में और ज्ञान
में लगता है लेकिन आचरण में नहीं होता।
व्यवहार किसी आचरण का नाम नहीं। हम कहें ये सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति 28 मूलगुण पालन करने का भाव, उसको भी व्यवहार कहते हैं ना। क्यों व्यवहार कहते हैं? क्योंकि वो तो राग भाव है, निश्चय तो वितराग भाव है। तो उसके साथ वाले राग को भी हम रत्नत्रय कह देते हैं, वो रत्नत्रय नहीं है। परंतु सच्चे जो निश्चय रत्नत्रय के साथ साथ पाया जाता है उसको कह देंगे हम व्यवहार से है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यवहार नय से, नय ने एंगल, कथन पद्धति कहेंगे, ज्ञान का किसी एंगल से व्यवहार नय से, यानी वो ज्ञान का ही अंश है नय। परिपूर्ण वस्तु को सभी एंगल से एट ए टाइम जानना उसको कहेंगे प्रमाण। उसमें किसी एक की मुख्यता से पूरी वस्तु को वैसे देखना ये हो गया नय। जैसे सोने की बंगड़ी, हमने अवस्था को भी देखा और वो सोने को भी देखा तो ये हम कहेंगे प्रमाण। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। उसी बंगड़ी को केवल सोना कितना हमारे पास तो हम उसको बंगड़ी को गौण करते, वो बंगड़ी है कि हार है कि क्या है उसको गौण कर देते हैं और मात्र सोने को मुख्य करते हैं तो वे निश्चय नहीं हो गया उसका द्रव्यार्थक। और अभी आपके पास क्या क्या गहने हैं तो हमने सोने को गो किया गौण और वो डिजाइन को किया मुख्य। तो इससे हमारे अभिप्राय पर निर्भर है हम किसको मुख्य कहते, परंतु वहां दोनों ही वहां मौजूद है। ऐसे यहां पर भी व्यवहार नए से, जब व्यवहार नए की बात आती है तो ये समझना कि वहां निश्चय होना चाहिए। निश्चय बिना का अकेला व्यवहार नहीं होता। वर्णी नहीं है तो हम चाय की वर्णी कैसे कहेंगे। तो व्यवहार नए से जीव अजीव आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निर्जर और मोक्ष, इन सबको मिलकर एक नाम क्या होगा, नौ पदार्थ, क्योंकि नौ है ना, उसमें पुण्य पाप हटाएंगे तो मैंने सात तत्व, बात एक ही है। तो इन नौ पदार्थों का जैसा इनका परमार्थ स्वरूप है, जैसा इनका रियल स्वरूप है, जैसी रियलिटी है, वैसा ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा मनवचन काय और कृतकारिता अनुमोदना से, कृत ने करना, कारित ने कराना और अनुमोदना ने करते हुए को अपने स्वीकृति देना को या अनुमोदना करना, उससे हिंसा आदि पांच पापों का सम्यक ज्ञान पूर्वक छोड़ना सम्यक चरित्र। इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। ये सब किसकी बात चली, व्यवहार रत्नत्रय, क्योंकि यह नौ पदार्थों की श्रद्धान को बताना और जैसा का वैसा श्रद्धान, परंतु उसमें अपने आत्मा का श्रद्धान के साथ साथ ये बातें होती है। तो आत्मश्रद्धान ही निश्चय समय दर्शन, और हमें आत्मा का तो श्रद्धान है परंतु ये नौ पदार्थों का ये क्या होते हैं हमें कुछ मालूम नहीं। वो है ये कि उपादेय के रखने जैसे के प्रकट में हमें कुछ उसमें पता भी नहीं है, निर्णय भी नहीं है। तो कहते वो तुम्हें आत्मा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं, क्योंकि ये जो भले इसका ज्ञान भी होना चाहिए, श्रद्धान भी जैसा है वैसी प्रतीति, वैसा श्रद्धान होना आवश्यक है, तब जाके आत्मा का श्रद्धान करके आत्मा में स्थिरता होगी। बिना इसको जाने, बिना इनका श्रद्धान किए आत्मा का श्रद्धान नहीं हो सकता, इसलिए भी इनको व्यवहार नाम दिया। और ऐसा भी कहीं कहीं कथन आएगा कि ये साधन है और वो निश्चय वो साध्य है, अपेक्षा से कथन आता। तो ये तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। देखो यहाँ क्या बात हुई, ये तो ये नौ पदार्थों का जैसा है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन बताया, वैसा का वैसा जानना सम्यक ज्ञान बताया, और हिंसा आदि पांच पापों का छोड़ना, ये नहीं यहाँ छोड़ने में कुछ प्रवृत्ति आ गई अभी, उसको अन्य ने पाप को छोड़ा है, बाद में कहीं अंतरंग में स्थिरता ये सब कुछ है निश्चय से, मतलब ये तो व्यवहार से वो बता रहे हैं। तो कहते उसी रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाली विषयों की चाह को रोकना तप है। अब तप को भी इसके साथ साथ बता दिया, क्या कहते हैं, हमने तप की एक परिभाषा सुनी है बहुत बार, इच्छा निरोधस्तम, कहाँ लिखा है, टीका में लिखा है, मूल सूत्र नहीं है, अन्य ग्रंथ का ये उदाहरण है। द्रव्य संग्रह में नहीं है, ये अन्य शास्त्र में है, मुझे पता था वो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस शास्त्र का। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाली विषयों की चाह, विषय क्या होता है, विषय किसको कहेंगे, इंद्रियों का विषय कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसका, उस इंद्रिया जिसको जानती है उसको उसका विषय कहेंगे, परंतु ये मैं जान रहा हूँ ऐसा नहीं मान रहा, मैं उनको भोग करता हूँ ऐसा मानता हूँ, और ये विषयों के प्रति उसकी चाह पड़ी है, इच्छा है, वो दुखी है उस इच्छा से और दुख दूर करना चाहता है, इसलिए विषयों की तरफ दौड़ता है। डॉक्टर के पास कौन जाता है, बीमार जाता है, वो बीमारी से दुखी है इसलिए जाता है। तो विषयों के पास कौन दौड़ता है? हाँ, जो दुखी है चाह से, यानी हम चाहे वो विषय, हमारे पास कितने विषय है तो यानी उसको भोगने का भाव है, वो दुख है, वो अत्यंत दुखी है। और मुनिराजों के पास तो कोई विषय तो है नहीं है पंचेंद्रियों के, और फिर भी वो कितने प्रचुर आनंद में। और अरहंतों के पास तो वो तो अनंत सुखी है, कुछ भी नहीं है। तो कहते इसको रोकना तप है, एक कहने की बात है रोकना, तो वो स्वयं उसकी चाह उत्पन्न नहीं होती है, ये सहज वाली बात है। परंतु चरणानुयोग के ग्रंथों में उसको रोकना ऐसा कहेंगे विशेषार्थ, जिसके द्वारा विधि पूर्वक विभाग किया जाए, उसे व्यवहार नय या अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? यानी व्यवहार नय का लक्षण क्या है, वो क्या करता है? या तो एक ही अभेद चीज में विभाग करता है, या दो द्रव्यों को इकट्ठा संयोग से उसका एक साथ कथन करेगा। ये दोनों ही व्यवहार नय के लक्षण है, कहो उसके कार्य। देखो द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य को विषय करने वाला जो नय है उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि भेद पाड़ना ही अशुद्धता है। आत्मा कहो या अन्य कोई भी द्रव्य एक अखंड वस्तु है, परंतु वो कैसी है समझने के लिए हम उसके गुणों की अपेक्षा भेद करते हैं, उसके प्रदेश कितने उसके भेद करके बताते हैं। एक एक समय के बाद एक एक पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, तो काल की अपेक्षा उसमें हम एक एक समय वाला भेद करते हैं। ये सब भेद हो गए। भेद करना वो अशुद्धता है, और अभेद अखंड को ग्रहण करना वो शुद्धता। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। यह नय अभेद रूप वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है। कितना आसान बता रहे, वस्तु तो अभेद है, ना क्षेत्र से खंडित होती है, ना काल से खंडित होती है, ना वो द्रव्य के दो टुकड़े होते हैं, ना उसके भाव यानी गुणों के टुकड़े होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित वस्तु है, फिर भी उसमें भेद रूप ग्रहण करता है, नहीं जानता, जानने के लिए भेद किए जाते हैं। ये भेद समझने के लिए, समझाने के लिए, आत्मा आत्मा है, परमाणु परमाणु है। परंतु हम कहेंगे परमाणु किसको कहेंगे, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको पुद्गल कहेंगे, पुद्गल का वो जिसका दूसरा अंश नहीं होता है, ऐसे जो द्रव्य है वो इटसेल्फ, वो उसको हम परमाणु कहेंगे। आत्मा किसको कहना कहेंगे, जिसमें ज्ञान है दर्शन है, वो सब उसके गुणों की बात करेंगे। ऐसे भेद नहीं है, परंतु समझने के लिए करते। तो कहते अभेद रूप वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है यह नहीं। जैसे भारत एक अखंड देश है, तो भारत कैसा है क्या है, तो हम कहेंगे वो कहां से कहां तक फैला है, तो उसमें इतने सारे महाराष्ट्र है, वो गुजरात है, तमिलनाडु, ये सब उसके स्टेट्स अलग अलग हम वर्णन करें। परंतु जब भारत कहेंगे तो एक अखंड उसको रूप से उसको ग्रहण करना है, और भेदों को ग्रहण करना वो व्यवहार नहीं हो जाता। इसका उपयोग यानी क्यों भेद रूप करते हैं, वस्तु में भेद नहीं है तो भेद रूप कथन क्यों करते हैं? तो कहते हैं अज्ञानी जनों को समझाने के लिए किया जाता है। यानी वस्तु क्या है कैसी है जिसको मालूम नहीं है उसको अज्ञानी कहा, तो उसको समझाने के लिए। क्योंकि वस्तु का यथार्थ स्वरूप वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो उसके भेद रूप वगैरह करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। व्यवहार नय का आश्रय लेकर ही यानी वो भेद रूप वो कथन करके ही उसे वचन के द्वारा कहा जा सकता है, उसे ने वस्तु को। और वैसा करने पर गुणों और पर्यायों के विस्तार से उसकी सैकड़ों शाखाएं फैलती जाती है। गुणों और पर्यायों के विस्तार यानी उसका हम अभेद वस्तु में उसके अगर हम भेद करेंगे तो अनंत गुण है, पर्याय हर समय में एक एक है, वो भी अनादि से अनंत, अनंत काल तक की पर्याय सब अनंत होती है, तो हमने उसको भेद कहे। इस तरह व्यवहार नय के आश्रय से ही प्राथमिक पुरुष यानी जो अभी आगम पढ़ने के सम्मुख हुआ है वो प्राथमिक कहा, यानी जिसका भी अभ्यास नहीं है, अभी जिसने शुरू किया है उसके लिए कहते हैं मुख्य और उपचार कथन को जानकर, मुख्य कथन यानी जैसा है वैसा, और उपचार कथन यानी जैसे हम भेद है ही नहीं परंतु हमने भेद करके समझा है। दो वस्तु तो बिल्कुल भिन्न भिन्न है परंतु दोनों का इसने उसको किया उसने उसको किया ये कहीं ये उपचार हुआ। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है ये तो निश्चय हुआ, मुख्य हुआ, और उपचार क्या है, जीव ने कर्म को बांधा, कर्म ने जीव को फल दिया, ये ऐसी जो बातें है। ये मनुष्य जीव है, ये एक इंद्रिय जीव है, जीव को कोई इंद्रिया नहीं है, जीव द्रव्य को इंद्रिया कितनी होती है, नहीं होती है, तो संयोग की अपेक्षा, ज्ञान की उघाड़ की अपेक्षा ये जो कथन किया जाता है। तो कहते हैं कि मुख्य और उपचार कथन को जान कर, देखो दोनों को जानने को कहा, उपचार को भी जानना उतना ही आवश्यक है, बिना उसको जाने निश्चय प्रकट होगा ही नहीं किसी को, क्योंकि ये तो संयोगों का अगर ज्ञान नहीं होगा, अब यहाँ संयोग में कर्म भी है शरीर भी है जीव के ऐसे ऐसे विकारी भाव भी है, यदि इनका ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर ये क्या है इतनी झंझट क्यों करनी है, जीव तो शुद्ध ही अनादि से नहीं, पर पर्याय में ये अशुद्धता है, विकार है, शरीर का संयोग है, अभी मनुष्य पर्याय में है, ये सब बातें है वहां, और है तो उसका स्वीकार भी ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसलिए कहते इनको भी जानना है, इसको कहेंगे व्यवहार को जानना। तो कहते दोनों को जानकर शुद्ध स्वरूप को अपनाते हैं, यानी जानना तो दोनों को है, संयोगों को भी जानना, भेदों को भी जानना, और जानकर अभी क्या कहेंगे, इस रूप में नहीं, मैं तो अखंड अभेद हूं, अनंत गुणों का विस्तार जानेंगे कि ऐसी वस्तु है अद्भुत, क्योंकि मैं तो अखंड अभेद हूं, ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं है मेरे। तो कहते शुद्ध स्वरूप को अपनाते हैं, इस दृष्टि से व्यवहार भी पूज्य, कौन सा व्यवहार, ये जो समझाने वाला, उसने क्या किया, उसने मुख्य वस्तु को बताया, बताने का कार्य तो उसी ने किया, और जब बताया तब हमने उसको गौण कर दिया, और फिर उस निश्चय वस्तु को अभेद अखंड वस्तु को पकड़ा, तो व्यवहार ने अपना काम कर दिया, यानी निश्चय को बताना ही उसका कार्य है, और उसको अगर नहीं जानेंगे हम तो निश्चय वस्तु कैसी है वो समझ में नहीं आएगी, निर्णय नहीं होगा, क्योंकि पूरा उपदेश ही वो वचन, वचन में हम कुछ समझाने जाते तो सारा व्यवहार ही तो है, निश्चय तो क्या है, बस जानते रहो उसको अभेद अखंड वस्तु को, वो कब होगा, जब व्यवहार समझकर तत्व का निर्णय करेंगे तब जाके उन सभी को गौण करके, तो गौण करना है तो पहले जानना क्यों, हाँ तो क्या करेंगे हम स्कूल में जाते हैं दसवीं के बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ना है तो जाना क्यों, हाँ पूरा पढ़कर फिर छोड़ना, नहीं तो आगे एंट्री नहीं मिलेगी, नदी पार करना है तो नाव में बैठना भी पड़ेगा और पैर तीर पे उतरना भी पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है तो बैठे क्यों, और छोड़ना है तो बीच मझधार में छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पुण्य के बारे में भी ऐसा होता है, ये साथ साथ पुण्य भी, पुण्य भाव शुभ भाव भी है, और वो तो है ये है, छोड़ने हैं, छोड़ने तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो अशुभ में चले जाए, अभी शुद्ध भाव तो प्रकट नहीं हुआ है, तो ये शास्त्र का कथन जो है उसका सही रूप से हमें ग्रहण होना चाहिए। देखते इस दृष्टि से व्यवहार भी पूज्य, अपने यहाँ तो व्यवहार को पूज्य कहा, और समय सारे का पूरा सभी व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और शुद्ध नय भूतार्थ है, किसके सामने, शुद्ध नय के सामने वो छोड़ने लायक है, उसको कि वो है ही नहीं, छोटा झूठा है नहीं, यानी सर्वथा नहीं है, वो बात नहीं है, व्यवहार नय भी समय ज्ञान का अंश है, निश्चय नय भी समय ज्ञान का अंश है, समय ज्ञानी ही उसको ये भेदों को बता रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम, जैसे लोग आत्मा कहने से नहीं समझते ये आत्मा आत्मा क्या होती, किंतु जब व्यवहार नय का आश्रय लेकर कहा जाता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र वाला आत्मा होता है तो समझ जाते हैं, क्योंकि हमें हरेक को ज्ञान 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 जानने की प्रयत्न हो रही है, यानी जानना क्या है वो हमारे पता है हमको, तो उसको बताया जाता है कि जिसमें ज्ञान है जो जान रहा है, जिसमें दर्शन है जिसमें ये चारित्र है वो आत्मा है, किंतु ये तीनों परमार्थ से एक आत्मा ही है, कोई अन्य वस्तु नहीं है, यानी ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये ऐसा नहीं है। ये तो हमने समझाने के लिए भेद करके समझाया, परंतु वस्तु इन त्रयात्मक वस्तु है, त्रयात्मक क्या अनंतात्मक है। हम तीनों को मुख्य करके उसकी बात की है, परंतु अनंत गुण वहां पर है। तो ऐसी अद्भुत वस्तु है और वो अखंड है, अभेद है। हम तो ये भेदों को आत्मा को समझने के लिए हमने भेद कहे, परंतु कहते हम भेदों में इतने उलझते गए, बिल्कुल उसके टुकड़े 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 करे और उसको जोड़ना ही रह गया। अवैध वस्तु को पकड़ा ही नहीं, तो कहते इसका भी व्यवहार नए का जो प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं हुआ। व्यवहार नए भेद करने के लिए नहीं समझाया, उसने भेद अभेद को लक्ष्य करके समझने के लिए बताया। जब व्यवहार नए से जो कथन किया वो समझ में आया है, अभी वो जाना हुआ रखो ना ज्ञान में, अभी अभेद का लक्ष्य करो। वो ज्ञान में से छूटने वाला नहीं है। व्यवहार नहीं को गौण करके हम पूरे अभेद अखंड वस्तु को अगर हम ज्ञान में उसको नहीं लेंगे, उसी को जानते नहीं रहेंगे, इसे आत्मा का अनुभव नहीं। हम तो भेदों में इतने उलझे, इससे भी नहीं वो, उससे भी नहीं ये सब, यानी ये विवाद में कहो या उसके शब्दों में अटक गए। देखो छोटा बच्चा भी वो तो क्रिकेट मैच देखता है, वहां जो चलती है मैच, तो कैसा करता है क्या है, तो स्वयं एक्शन करने लगता है। और हम तो इसको पढ़ते जाते हैं, स्वयं वहां एक्शन की कोई बात होती नहीं है। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, किंतु ये तीनों परमार्थ से एक आत्मा ही है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। जैसे देवदत्त का, जब शास्त्र में देवदत्त नाम लिया जाता है, कोई भी एक नाम लेना तो देवदत्त के, देवदत्त का ज्ञान श्रद्धान और चारित्र देवदत्त रूप ही है, उससे भिन्न वस्तु नहीं है। ये समझे ना, ये राजा कैसा है, तो सद्गुणी है, पराक्रमी है, हा? और बहुत अच्छा है दिखने में, तो वो एक ही वस्तु है ना, कोई अलग अलग तो बातें, तीन बातें तो है ही नहीं उसकी। हाँ, ये साधु ऐसा कुछ नहीं,
पूरा राजा
तो उससे भिन्न वस्तु नहीं है। उसके गुणों की अपेक्षा भेद करके बताया, कहीं पर्याय की अपेक्षा करेंगे, किंतु वो वस्तु तरीके एंटिटी एक ही है, उसके भिन्न भिन्नता नहीं है वहां पर। यानी वो अभेद का लक्ष्य कभी छूटना नहीं चाहिए। भेदों को समझते हुए भी लक्ष्य तो अभेद को करना है, पर्याय को समझते हुए भी वो उस एक पर्याय के द्वारा भी हमको वस्तु का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे जानना हमारी पर्याय चल रही है, तो जानना ये कौन से गुण का कार्य है, ज्ञान गुण का। तो जहां जानना हो रहा है वहां ज्ञान गुण है, ये नक्की है, और जहां ज्ञान गुण है वहां अनंत गुण है, वो भी नक्की है। तो जहां जानना हो रहा है वही तो आत्मा है, आत्मा से भिन्न तो वस्तु है ही नहीं है, पर्याय भी आत्मा से भिन्न नहीं। कहीं कहीं तो राग के द्वारा भी पूरे आत्मा को पकड़ने की बात आती है, दीपचंद जी ने वो अपने ग्रंथों में लिखा है। कहीं कहीं राग द्वेष कहां हो रहे है, अरे यहां हो रहे है, ये विभाव भाव है, परंतु वो चारित्र गुण तो मेरा है। जहाँ चारित्र गुण है वहाँ अनंत गुण है, मैं उस रूप नहीं हूँ, वो तो अपेक्षा बात है, अलग है। तो हमें तो वस्तु को पकड़ना है, अपने को पकड़ना है, वस्तु ने अपने को पकड़ना है। हाँ, क्योंकि जीव को मैं हूँ ये तो एहसास है हर जीव को, मिथ्या दृष्टि हो या कोई भी हो, परंतु मैं कौन हूँ इसके बारे में भ्रमना चाहिए। मैं हूं के नहीं हूं इसके कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, ये देवदत्त का उदाहरण दिया, उसी प्रकार हम 69 पेज पर आए, आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और चारित्र आत्मरूप ही है, भिन्न वस्तु नहीं है। देखो समय सार ने भी कहा है, आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसके भेद नहीं। पहले कह दिया आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, बाद में कहते आत्मा में ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी, यानी उसके भेद नहीं है, आत्मा एक अखंड वस्तु है। अतः व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि साधु को नित्य दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना करना चाहिए, किंतु परमार्थ से तीनों आत्मरूप ही है। यानी वो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना को, अपने आत्मा की आराधना को, एक ही बात है। आता ना, ये आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, आत्मा की शरण लेना ही इनकी शरण है। इसी तरह निश्चय से आत्मा के श्रद्धान को सम्य दर्शन कहते हैं। वहाँ क्या कहा था व्यवहार से, नौ पदार्थों के श्रद्धान को सम्य दर्शन कहा। अब यहाँ निश्चय से, ये तो भिन्नता है ही नहीं, आत्मा की अवस्थाएं आत्मा से भिन्न तो है ही नहीं है, तो कहते हैं आत्मा के श्रद्धान को सम्य दर्शन कहते हैं। और व्यवहार से जीवादे नौ पदार्थों के श्रद्धान को सम्य दर्शन कहते हैं। ये नौ पदार्थ व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहे गए हैं, क्योंकि जीव और अजीव के मेल से ये नौ तत्व बनते हैं, एक के ही नहीं बनते। बाह्य दृष्टि से देखने पर जीव और पुद्गल की पुद्गल हुआ पुद्गल जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय को लेकर क्या कहते हैं। जीव और पुद्गल, पुद्गल नहीं है कर्म दे, अनादि से ही बंधे हुए अवस्था में, किसी ने उनको मिला ही नहीं है कि पहले छुट्टे थे और बाद में मिल गया, ऐसा तो नहीं था। जैसे सोना जो है खदान में मिलता है, उसके पाषाण में होता है, उसके और होते हैं, तो उसी अवस्था में वो पाया जाता है। ऐसे ही जीव कर्म अनादि से बंधे हुए है ही है। तो कहते हैं अनादि बंध पर्याय को लेकर उनमें एक पने का अनुभव करने पर तो ये नौ तत्व सत्यार्थ है, यानी इनको इकट्ठा अगर हम लेते हैं, उनके एक पने का अनुभव करते हैं, तो ये नौ पदार्थ अलग अलग भिन्न भिन्न है वहां पर। किंतु एक जीव द्रव्य के ही स्वभाव को लेकर देखने पर असत्यार्थ है, क्योंकि आश्रव बंध वो तो है ही नहीं, वो तो एक स्वभाव जो है वो अनादि अनंत एक रूप है, उसमें तो ये संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, वो तो अलग अलग जो पर्याय की अपेक्षा बात बताई जाती है, और यहाँ मुख्यतः जीव और कर्मों के संयोग की बात है। तो कहते हैं वे असत्यार्थ है, क्योंकि जीव के एकाकार स्वरूप में ये नहीं है। स्वभाव कैसा है, स्वभाव थोड़ा थोड़ा बदलता होगा ना, निगोद अवस्था में भिन्न था और केवल ज्ञान होने पर भिन्न नहीं, स्वभाव तो त्रिकाल एक जैसा रहता, एक रूप कहते उसमें, उसमें कोई वधघट नहीं है, वो किसी से बना नहीं है, अनादि से है 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 है, और जैसा है वैसा कायम रहता है, उसी को स्वभाव कहते हैं, जो अमर्यादित अनलिमिटेड होता है। तो कहते जीव के एकाकार स्वरूप में ये नहीं है, ये जो भिन्न भिन्न तत्व बताए पदार्थ बताए है, ये जीव के स्वभाव में तो है ही नहीं है। अंतर्दृष्टि से देखने पर ज्ञायक भाव जीव है, ज्ञायक भाव ने अकेला ज्ञान नहीं लेना, उसमें ज्ञायक भाव ने पूरा द्रव्य लेना, पूरा आत्मा लेना। जीव के विकार का कारण अजीव है, देखो यहाँ तत्व बता रहे, अलग अलग पदार्थ बताते हैं, इन्हें ज्ञायक भाव जीव है, जीव के विकार का कारण अजीव है, अजीव का लक्ष्य करने से या अजीव में कर्म के उदय से कहेंगे तो वहां ये जीव के विकार होते हैं। पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये अकेले जीव के विकार नहीं है, किंतु अजीव के विकार से जीव के विकार के कारण है। आप कहेंगे मोक्ष भी विकार हुआ क्या, विशेष कार्य हुआ ना कार्य हुआ वहां पर, यानी मोक्ष भी पर्याय प्रकट हुई, पहले बंद पर्याय थी, अब मोक्ष पर्याय प्रकट हुई, तो मोक्ष पर्याय प्रकट हुई यानी वहां कर्मों का वहां सद्भाव था संयोग था वो निकल गया, निकल गया, परंतु स्वभाव तो वैसा ही था जो बंध अवस्था में था, और स्वभाव तो वैसा ही रहा जो मोक्ष अवस्था में। ये बंध और मोक्ष तो हम ये कर्मों की संयोग की अपेक्षा से बताते हैं। तो कहते हैं अगर उसके जीव के स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे हम तो जैसा का वैसा है। तो यहाँ यही कहते हैं जीव के स्वभाव को अलग करके स्वपर निमित्तक एक द्रव्य पर्याय रूप से अनुभव करके इन तत्वों का श्रद्धान करना स्वपर निमित्तक यानी स्वपर स्व और पर के निमित्त से होने वाले एक द्रव्य पर्याय रूप से अनुभव करके इन तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार नय से या व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसी तरह इनका जानना सम्यक ज्ञान है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अनेक जीव मिलकर तो एक पर्याय नहीं होती द्रव्यों की, परंतु अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर एक स्कंद होता है, इसको हम द्रव्य पर्याय कहेंगे। पर इसमें मात्र एक जाति के द्रव्य, कौन से? पुद्गल। तो इसको कहेंगे समान जातीय द्रव्य पर्याय। वो गुणों की पर्याय होती ना, जानना वगैरह, उसकी बात नहीं है। यहाँ द्रव्य पर्याय नाम है। अब यहाँ हम एक जीव द्रव्य है और वहाँ ये पुद्गलों का, अनंत पुद्गलों का संयोग हुआ है, ये भी द्रव्य पर्याय कहेंगे। कैसा? असमान, क्योंकि एक तो जीव है और अनंत पुद्गल है, इनके अभी संयोग से मिली जुली दिख रही है एक जैसी, तो उसको क्या कहेंगे? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो कहते एक द्रव्य पर्याय रूप से अनुभव करके, है तो भिन्न भिन्न परंतु उसको एक रूप से अनुभव करेंगे, इन तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार ने यानी व्यवहार से सम्यक दर्शन है। इसी तरह इनका जानना सम्यक ज्ञान है। आगे कहते हैं मनोवचन काय कृतकारित अनुमोदन से हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह इन पांच पापों का त्याग करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। यानी वो सब में लगा, मन से करने कराने अनुमोदना करने का त्याग, इसी तरह वचन से कृतकारित अनुमोदना, काय से भी कृतकारित, किसके बारे में? पांचों पापों के बारे में। काय से भी हिंसादि पापों के करने कराने और अनुमोदना का त्याग होना चाहिए, यद्यपि ये बाह्य त्याग प्रतीत होता है, इसलिए इसे व्यवहार नाम दिया है, तथापि इसका लक्ष्य है आत्मा को राग द्वेष से निवृत्त करना। देखो ये भाषा क्या है, आत्मा को राग द्वेष से निवृत्त करना। ये कैसे होगा कि राग द्वेष रहित ऐसा जो स्वभाव भाव है, वितराग भाव है, उसका लक्ष्य करके उसी में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। हम कहेंगे इसका त्याग किया, ये ऐसी भाषा होती है। राग द्वेष वश ही पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। पाप क्यों करना, कोई झूठ क्यों बोलता है, हिंसा क्यों करता है? तो कहते राग द्वेष के वश होकर उस प्रवृत्ति को रोकने से राग द्वेष की निवृत्ति में सहायता मिलती है। यानी ये जो पाप कर्मों में प्रवृत्ति हो रही, हिंसा झूठ आदि में जो है, तो उसको रोकेंगे तो राग द्वेष कम होने में सहायता मिलती है। ये निमित्त नैमित्तिक भाषा, यद्यपि तप चारित्र में ही अंतर्भूत है, तथापि आराधना में तप को अलग गिनाया है। जैसे दर्शन आराधना, कितने आराधना है? ज्ञान आराधना, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इसलिए उसकी आराधना है ना, उसको प्रकट करना, आत्मा में स्थिर होना ही वो आराधना है। आराधना यानी वो थाली लेकर पूजा करने की बात नहीं है, इसलिए तप का लक्षण भी कहा है। तप रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी प्रवृत्ति को रोका ना, प्रवृत्ति को रोका, ये पाप में जाने वाली प्रवृत्ति को रोका, तो रोक लगाए। अब आत्मा में स्थिरता के लिए ये कार्यकारी है, इसलिए कहते हैं कि रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए ये तप किया जाता है। आगम में कहा है कि रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए विषयों की इच्छा को रोकना तप है। देखो ऐसा वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ऐसा लगता है मन में इच्छाएं तो बहुत उत्पन्न हो रही है, पर क्या करें, अभी ये नहीं करना है मेरे को, तो वो सच्चा रोक नहीं है। ये इच्छाएं कैसे नहीं उत्पन्न होगी? तो कहते तत्व ज्ञान के बल से ये हो सकता है। हम अपनी बात करेंगे, पहले हम इसको नहीं पढ़ते थे तो अन्य अन्य विषयों में कितने बाहर इधर जाओ उधर जाओ ये करो वो करो उसमें रुचि रहती थी। अब जब ये सही ख्याल में आ गया वस्तु का स्वरूप तो वो बातें उत्पन्न ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती अपने पर कुछ अंकुश या रोक लगा रहे, ये बात नहीं। जो जबरदस्ती लगाएंगे तो कितने काल तक टिकेगा, बहुत ज्यादा काल तक। कोई दूसरा मिलेगा ऐसा उल्टा बताने वाला तो पलट जाएगा जीवन। आगे कहते हैं, जैसे श्रद्धा ज्ञान और आचरण पूर्वक ही रसायन औषध इष्ट फलदायक होती है, ये रसायन नाम की जो औषधि है उसके बारे में दृष्टांत दिया। तो कहते नहीं उसकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, उस संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए और वो किस तरह से उसको लेना उसका आचरण भी होना चाहिए। उसी प्रकार इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय पूर्वक किया गया हेय और उपादेय तत्व का चिंतन ही इष्ट सिद्धि कारक होता है, अन्यथा नहीं। हमें इष्ट क्या है, अपने आत्मा में स्थिरता और वितरागता की प्राप्ति, अंतरंग में स्थिर हो जाना। ये 94 पहले पढ़ेंगे हम। श्रद्धानबोधानुष्ठानैस्तत्त्वमिष्टार्थ सिद्धिकृत् समस्तैरेव नव्यस्तैरसायनमिवौषधम्। जैसे रसायन औषध के श्रद्धान मात्र या ज्ञान मात्र या आचरण मात्र से इष्ट अर्थ यानी दीर्घ आयु आदि की सिद्धि नहीं होती, क्या कहे अकेले श्रद्धान से खाने ने रसायन लेने से यह सिद्धि हो जाएगी, यानी क्या होता है उससे वो चिरतारुण्य रहता है। आपने सुना है कि नहीं, ये रसायन नाम की औषधि लेते हैं आयुर्वेद में आती, मात्र उसका ज्ञान किया तो हो गया ना फायदा। श्रद्धा नहीं है ज्ञान भी नहीं है और बस कुछ भी कैसे भी सेवन करे तो भी उसका फायदा क्या होता है तो दीर्घ आयु, यही उसका फल है। तो कहते उसकी सिद्धि नहीं होगी, किंतु रसायन के ज्ञान और श्रद्धानपूर्वक आचरण करने से ही होती है। वैसे ही ये तो दृष्टांत हुआ, नहीं तो रसायन कहाँ मिलेगा हम क्या क्या करेंगे उसकी चिंता मत करो, क्योंकि शरीर से भिन्नता जानी है ना। वैसे ही श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान, इन तीनों के समुदाय के साथ ही तत्व अभ्युदय और मोक्षदायक होता है। यानी तत्व क्यों कैसा फलदायी होगा तो उसका श्रद्धान करना है, ज्ञान करना है और उसी में अनुष्ठान यानी स्थिरता भी होनी चाहिए। मात्र दर्शन या ज्ञान या चारित्र अथवा इनमें से किन्हीं दो के भी होने पर इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। इष्ट अर्थ है हमारा मोक्ष की प्राप्ति। तो कहते हमारा श्रद्धांत तो है परंतु हम जानते नहीं, ज्ञान नहीं है तो कुछ काम कर, हमने जाना सब ये सब तत्वों को जान लिया परंतु श्रद्धा नहीं है और वैसे अंतरंग में स्थिरता नहीं है, इतना तो अभ्यास कर रहे हैं हम, तो कहते उसको सिद्धि नहीं होगी। अब कहते चारित्र ने उसमें बाह्य मात्र व्रतों का अंगीकार किया, न श्रद्धा ने ज्ञान ने तत्व का निर्णय नहीं है, तो कहते उसकी भी सिद्धि नहीं होगी। आगे कहते हैं कि व्यवहार मार्ग पर चलने वाले को समाधि रूप निश्चय मार्ग के द्वारा कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करना चाहिए। यहाँ व्यवहार मार्ग नहीं, वो उसने तत्वों को जाना है श्रद्धान किया है वैसे वो उसको यहाँ व्यवहार रूप से अंगीकार कर। 95 श्रद्धान गंध सिंदूर मधुष्ट मुद्यत अवगम महामात्रम धीरो व्रत बल परिवृत्तम आरूढ़ोरी न जयेत प्रणिधि हेत्या। जैसे धीर वीर योद्धा, ये धीर क्या होता है और वीर क्या होता है, वीर यानी पराक्रमी और धीर यानी धीरे यानी कैसा ये उसका जो प्रतिपक्ष का जो हमला है वो, हाँ, वो वार झेलने वाला उसको धीर कहते हैं। डिफेंस भी होना चाहिए, डिफेंस अकेले ने शत्रु का आक्रम को बराबर रोकने वाला, जैसे पहले ढाल और तलवार से युद्ध करते थे, अकेले मारते क्यों नहीं थे, ढाल के क्या है, हाँ। तो जो प्रतिकार करेगा, कोई प्रहार करेगा तो उसको झेलने वाला वो धीर कहेंगे, हाँ, धैर्यपूर्वक उसका उसको झेल सकेगी, उससे डिगेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। जैसे धीर वीर योद्धा कुशल पीलवान के द्वारा नियंत्रित गंध हस्ती पर चढ़कर सेना के साथ शस्त्र से शत्रुओं को जीतता है, वैसे ही धीर मुमुक्षु भी उच्च ज्ञान रूपी पीलवान के साथ निर्दोष सम्यक दर्शन रूपी गंध हस्ती पर आरूढ़ होकर व्रत रूपी सेना से घिरा हुआ समाधि रूपी शस्त्र के द्वारा कर्म रूपी शत्रुओं को जीतता है। ये दृष्टांत और अलंकारिक भाषा में इसको बताया है। धीर वीर शोधा जो युद्ध में जो रणांगण में जाता है तो हाथी पर वो चढ़ा है और वो हाथी को नियंत्रण करने वाला वो दूसरा कोई है उसका, उसको माउत कहते हैं, पीलवान कहा उन्होंने, और सेना के साथ शत्रुओं पर आक्रमण करता है और उसको जीतता है। इसी तरह यह आत्मा प्रकटित किया, विशेषार्थ में देखेंगे। देखो यहाँ निर्दोष सम्यक दर्शन को गंध हस्ती की उपमा दी है। गंध हस्ती अपने पक्ष को बल देता है और पर पक्ष को नष्ट करता है। निर्दोष सम्यक दर्शन भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है और कर्मों की शक्ति को क्षीण करता है। ज्ञान को पीलवान की उपमा दी है। कुशल पीलवान के बिना गंध हस्ती का नियंत्रण संभव नहीं है। गंध हस्ती को कंट्रोल करने वाला होगा उसको पीलवान कहा जाता है। इसी तरह श्रद्धान के साथ आत्मज्ञान का होना आवश्यक है तथा व्रतों को सेना की उपमा दी है। सेना के बिना अकेला भी शत्रु को परास्त नहीं करता। इसी तरह बिना चारित्र के अकेले समय दर्शन से भी कर्मों को नहीं जीता जा सकता। यानी मोक्ष प्राप्ति तक की बात है इसलिए उसकी अपेक्षा से बात की। यहाँ चारित्र ने अधिक अंतरण में स्थिरता से लिया, किंतु इन सबके सिवा भी अत्यंत आवश्यक शस्त्र है समाधि यानी आत्म ध्यान। आत्मा की निर्विकल्प रूप अवस्था हुए बिना व्रतादि से भी कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। यानी बाह्य व्रत तो अंगीकार किए अभी तो मुक्ति होगी कि नहीं, कहते नहीं, आत्म स्थिरता से ही मुक्ति होगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि चारित्र में जितना भी प्रवृत्ति मूलक अंश है वह सब बंध का कारण है। क्या कहते हैं, ये प्रवृत्ति के रूप में जो जो चारित्र की बात आती है, प्रवृत्ति ने कैसे चलना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, वो बात है ना, वो समिति आदि का वो प्रवृत्ति रूप की बात है, परंतु तो सच में समिति है वो तो अंतर में स्थिरता कहेंगे। तो यहाँ जो प्रवृत्ति रूप है अंश है जिसको प्रवृत्ति मूलक अंश कहा वह सब बंध का कारण है, क्योंकि वो तो राग के साथ भी जुड़ा है। क्यों, सावधानी पूर्वक जैसे हिंसा न हो इसलिए सावधान है, यानी वहाँ शुभ भाव चल रहा है, वहाँ तो ये बंध का कारण। केवल निवृत्ति रूप अंश ही बंध का रोधक और घातक है। केवल निवृत्ति रूप यानी अंतरंग में स्थिरता रूप, जिसको हम गुप्ति भी कहेंगे, उसके अलग अलग नाम से समाधि कहेंगे, एकाग्रता कहेंगे, ध्यान कहेंगे, तप कहेंगे, नाम कुछ भी दे दो, बात एक ही है, अंतरंग में स्थिरता। तो केवल निवृत्ति रूप अंश ही बंध का रोधक और घातक है। ये रोधक और घातक अलग अलग क्यों कहे, लक्ष्मी जी आप कहना बहुत अच्छा। देखो बंध का रोधक यानी नया बंध रोकने वाला संवर है, और बंध का घातक यानी ऑलरेडी बंधे हुए को अधिक मात्रा में निकालने वाला निर्जरा। तो बंध का रोधक और घातक है। अतः आत्माभिमुख यानी आत्मा के अभिमुख यानी आत्मा के सन्मुख होना ही श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। अपनी ओर प्रवृत्ति और बाह्य और निवृत्ति ही चारित्र है। हमें तो प्रवृत्ति नहीं करनी, हाँ प्रवृत्ति अपने में करनी है और बाह्य से निवृत्ति। हमारा उल्टा हो रहा है, सभी प्रवृत्ति बाहर की ओर ही चलती है और हम तो बिल्कुल निवृत्त है, कैसे अंतर। किंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है। कितने भी अंतरंग में रहने की कोशिश करें परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान बिना वो यानी वो होगा ही नहीं, ये बात कहना चाहते। वैसे तो तीनों प्रकट हुए हैं चौथे गुण स्थान के साथ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही, अधिकाधिक आत्मस्थिरता अभी इसी के आगे हो सकती है। अब कहते 71 पेज पर, अब उद्योत आदि का लक्षण कहते। देखो हमने यहाँ पढ़ा था 68 पेज पर, 92 गाथा फिर पढ़ेंगे हम अर्थ केवल उसका। सेकंड लाइन 68 पेज पर उद्योत उद्योग निर्वाह सिद्धि और निस्तरण के द्वारा भेद रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग का आराधना करने वाला भव्य पुरुष पारमार्थिक मोक्ष मार्ग को नियम से प्राप्त करता। हमने वहाँ पर भी व्यवहार रत्नत्रय क्या होता है उसको देखे थे, नौ पदार्थों के जो श्रद्धा है उसका ज्ञान है, तो पहले उसको समझना भी चाहिए। अब इसी को अलग शब्दों में बता रहे। हम पहले गाथा पढ़ेंगे 96 नंबर की। दृष्ट्यादीनाम मल निरसनम द्योतनम तेष शश्वत वृत्ति स्वस्योद्यवनम उदितम धारणम निस्पृहस्य निर्वाह स्याद् भोभयभृत पूर्णता सिद्धिरेषाम् निस्तीर्णिस्तु स्थिरमपि तट प्रापणम् कृच्छ्रपाते। अब इसका अर्थ देखेंगे। अपने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और तप के दोषों को दूर करके उन्हें निर्मल करने को आचार्यों ने उद्योतन कहा है, उसी को मां उद्योत कहा यानी उसको निर्मल करना। अधिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप है तो उसमें यदि कोई दोष लगते हैं, कोई अतिचार है तो उसको दूर करना, तथा उनमें सदा अपने को एकमेक रूप से वर्तन करना उद्यवन है। उनमें ने सम्य दर्शन ज्ञान तप चारित्र वगैरह जो है अपने को एक रूप से वर्तन करना है ने उस रूप यानी क्योंकि उस रूप परिणत है ना, हाँ उस रूप अनुभव करना उद्यवन है। लाभ पूजा ख्याति, ख्याति ने प्रसिद्धि, हमें बहुत लोग माने, बहुत लोगों में मेरा नाम हो जाए, हो गई ख्याति। उसकी अपेक्षा न करके निस्पृह भाव से उन सम्य दर्शन आदि को निराकुलता पूर्वक वहन करना धारणा है यानी उसको धारण करना। ये ज्ञान में धारणा है उसकी बात नहीं है। यहाँ क्या कहा, ये जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वगैरह प्रकट हुए हैं तो निराकुलता पूर्वक वो धारण करना है, वहन करना है, अंगीकार करना है, वो कंटिन्यू रखना है। यानी उसमें कोई मुझे माने मैं बहुत बड़ा हो गया ऐसी बातें वहां नहीं होनी चाहिए, ये धारणा दी। अभी हमने क्या क्या नाम पढ़े थे वहां पे, उद्योत उद्योग निर्वाह कहा था वहां पर उसको, निर्वहन वहन करना है ना, निर्वहन वहन करना, संसार से भयभीत अपनी आत्मा में इन सम्यक दर्शन आदि को पूर्ण करना सिद्धि है। निर्वाह के बाद सिद्धि को लिया था, तथा परिशह उपसर्ग आने पर भी स्थिर रहकर अपने को मरणांत तक ले जाना अर्थात समाधि पूर्वक मरण करना निस्तरण है। हमें संस्तर तो देखा था, ये निस्तरण विशेषण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप के उद्योतन फिर देखेंगे। उद्योतन यानी उनके दोषों को दूर करके निर्मल करना। उद्यवन, उद्यवन यानी अपने को उस रूप से एकमेक रूप से वर्तन करना। निर्वहन यानी उसको वहन करना, निराकुलता पूर्वक धारण करना, धारणा। सिद्धि लिया यहाँ, उसको साधन कहा यानी वो पूर्ण करना। और निस्तरण यानी मरणांत तक यानी समाधि मरण, समाधि पूर्वक मरण करना, इसको आराधना कहते हैं। ये चार प्रकार की आराधना हो गई। अब उसमें से हर एक की अपनी अपनी जो दर्शन की आराधना क्या है, ज्ञान की क्या है, उसको बताएंगे। शंका आदि दोषों को दूर करना उद्योतन है, यह सम्यक्त्व की आराधना है। दोषों को दूर करने की बात है ना। देखो सम्यक दर्शन जो है वो कैसा है, निशंकित उसका अंग है, निकांक्षित, कोई कांक्षा नहीं। यदि उसमें कोई शंका कांक्षा होती है तो उन दोषों को दूर करना, यह है सम्यक्त्व की आराधना, यही उसका उद्योतन है। शास्त्र में निरूपित वस्तु के विषय में क्या ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार उत्पन्न हुई शंका का, जिसे संदेह भी कहते हैं, यानी संशय हुए ना, उसके बारे में कोई प्रश्न उठा, तो कहते युक्ति और आगम के बल से दूर करके, आगम को पढ़कर न्याय से, न्याय से उसको अच्छी तरह से उसका निर्णय करना, दूर करने में संदेह दूर करना, ये प्रश्न उसके बारे में अपने मन में कोई कंफ्यूजन है मान लेते तो वो दूर करना, यह ऐसे ही है ऐसा निश्चय करना उद्योतन है। ये दर्शन संबंधी उद्योतन बता। निश्चय संशय का विरोधी है। निश्चय ने ऐसा ही है ये जब हमने नक्की किया तो हमारा संशय मिट गया। निश्चय होने पर संशय नहीं रहता। निश्चय न होना अथवा विपरीत ज्ञान होना ज्ञान का मल है। जब निश्चय होता है तो अनिश्चय नहीं रहता तथा यथार्थ ज्ञान होने से विपरीतता चली जाती है, यह ज्ञान का उद्योतन है। ज्ञान को निर्मल करना है, यथार्थ रीति से जानना। देखो हम आगम का अभ्यास स्वाध्याय भी क्यों जरूरी है बारंबार, क्योंकि हम ये ऐसा ही है अन्यथा नहीं है इसका निर्णय करने के लिए बहुत कार्य करते हैं। और ऐसा बिल्कुल हुए बिना वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है तो उसमें स्थिरता नहीं होती। तो देखो ज्ञान का हमें क्या लगता है, क्या फायदा है इसको जानने से, क्या क्या फायदे बताए। देखो फिर से देखते क्या क्या फायदे। निश्चय होना नहीं ज्ञान, ऐसा ही ऐसा ज्ञान होना, क्योंकि हमारे उसके बारे में जो संदेह संशय था, कोई कंफ्यूजन था, कोई भ्रम था, वो मिट जाता। सही ज्ञान होना ही ज्ञान का फल है। तो हम फायदा किसमें गिनते हैं? वहां दुकान में दो घंटे बैठेंगे तो क्या फायदा होगा, और यहाँ दो घंटे, दो एक घंटा भी बहुत है, तो कब बैठने से क्या फायदा होता है, तो हम क्या गिनते हैं उसमें, इससे क्या लाभ है, ये जानने से क्या लाभ है। तो उस संबंधी अज्ञान दूर हुआ, यही तो लाभ है। लेकिन ये कर्मों को क्यों जानना, अरे उसके बारे में तो बहुत भ्रमणा चलती है कि कर्म ने हमको इतना दुखी किया, उसने हमको ये किया वो किया, अरे कुछ नहीं किया है उसने। जब हम सही जानते हैं तो भय दूर होता है हमारा, संशय तो दूर होगा, भय भी दूर होता है। देखो बच्चों को बोलो बाजू के रूम में से कुछ लेके आना, तो वहां अंधेरा है, जाने से डरते हैं, उनको वहां लाइट ऑन कर दो तो कोई डर नहीं उनको, क्योंकि वहां सभी वस्तुएं दिख रही है तो उसके कोई भ्रम नहीं है। ऐसा ही हमारा है, जब उसके बारे में नहीं जानते थे, अरे बापरे कैसे होगा, कर्म कैसा बांधा होगा, हमने क्या क्या पाप किए, ये अंदर ही अंदर वो तो आकुलता से ऐसा भयभीत रहता है। ये ज्ञान का उद्योतन हुआ। भावना का न होना चारित्र का मल है। देखो ये मल की बात है, शंका का उत्पन्न होना ये तो दर्शन का मल बताया, ये ज्ञान का मल है निश्चय नहीं होना, और भावना है स्थिरता, उस रूप भवन, हाँ उस रूप होना, एकाग्रता जिसको हम कहेंगे, परंतु तो परम एकाग्रता की भावना नहीं है उसकी बात नहीं। हाँ स्व में स्थिरता, तो ये न होना चारित्र का मल है। व्रतादि की भावनाओं में लगना चारित्र का उद्योतन है। असंयम रूप परिणाम होना तप का दोष है। ये संयमन ये तप है ना, तो असंयम होना, ये जो इच्छाओं का रोग था वो नहीं रहना, वो असंयम है, वो तप का दोष है। उसको दूर करके संयम की भावना तप का उद्योतन है, यानी संयम धारण करना। उत्कृष्ट यवन को उद्यवन कहते हैं, ऊपर शब्द आया था ना उद्यवन, उद्यवन यानी अपने को उसमें एक में एक रूप वर्तन करना, ऐसा है। आत्मा का निरंतर सम्य दर्शनादि रूप से परिणमन उद्यवन है, यानी उससे च्युत नहीं होना, उस रूप ही बने रहना। निराकुलता पूर्वक वहन अर्थात धारण करने को निर्वहन कर कहते हैं, कहते हमने उसका निर्वाह किया, ये शब्द आता है ना लौकिक में। परीक्षा आदि आने पर भी आकुलता के बिना, सॉरी सॉरी मैंने क्या लिखा, परीक्षा आदि आने पर भी आकुलता के बिना सम्य दर्शन आदि रूप परिणति रहना, यानी सम्य दर्शन आदि रूप परिणति चलती रहने, पहले तो थी परीक्षा आने पर भी उसमें दृढ़ रहा, तो कहते उसी रूप परिणति रहना निर्वहन है, उसने निर्वाह किया उस भूमिका का, यानी उससे से वो डामाडोल नहीं हुआ, हटाने उससे। अन्य और उपयोग के लगने से लुप्त हुए सम्य दर्शन आदि रूप परिणामों को उत्पन्न करना साधन है। यहाँ लिखा ना अपनी आत्मा में सम्य दर्शन आदि को पूर्ण करना, यानी उपयोग बाह्य में चले आता है क्योंकि अंतरंग में स्थिरता कायम नहीं, मुनियों के भी छठा सातवां चलता रहता है, तो कहते अंतरंग में ही स्थिर हो जाना वो सिद्धि है, क्योंकि उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। सम्य दर्शन आदि को आगामी भव में भी ले जाना निस्तरण है। देखो आगामी भव में ले जाना है समाधि पूर्वक मरण करना। इस तरह आराधना शब्द के अनेक अर्थ है, यहाँ बहुत आराधना के बहुत अच्छे अर्थ बताए। जब जहाँ जो अर्थ उपयुक्त हो वहाँ वह लेना चाहिए। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सुजे लो कालो सोवानी मस्तकनम सदा देव।